اور نہ ماننے والوں کا سرکار اور اس کا تجویز ہے تو پورے قرآن کا آئینہ کے پورے قرآن مشکل سورہ فاتحہ میں دیکھے جا سکتے ہیں, اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سورہ فاتحہ بیمار میں کبھی مسلمان پڑھتا ہے کبھی سنتا ہے. پانچ ہر وقت دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ سارے قرآن کے مضامین اسے ان کا دھیان اور ان کے سامنے آتے رہے ہیں. تو سورہ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے, اور اس کے بعد سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کہتے ہیں کیونکہ سورت کے اندر موجودہ انداز میں گائیں کھیل کرتے تھے ایک مجرم کی نشان نہیں ہوئی ہے, اس کا تذکرہ اسی نسبت سے سورت الگ سورت بقرہ میں رکھا گیا. شراب میں ابراہیم ہے, یہ وہ الفاظ ہیں جن کے معنی اور جن کی گہرائی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور پھر قرآن کی ہر معنی کا تذکرہ ہے, اس میں شک کوئی نہیں. پھر اس مختلف قسم کے لوگ ہیں, ایک کامیاب ہونے والے جنہیں ایمان والے کہتے ہیں, ان کی نمایاں خوبیاں ہیں جس میں سے غیر کی چیزوں میں ایمان رکھتے ہیں, جنرل کوئی بھی نہیں تھے, جانور کوئی بھی نہیں تھے, اور جہانات کوئی بھی نہیں تھے, اور سلاب کوئی بھی نہیں تھے, کس طریقے ایمان لے کے آنا, یہ ایمانداروں کی نمایاں خوبیاں ہیں. نماز قائم کرنا, زکات دینا, قرآن پر ایمان لے آنا, باقی جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان کو ماننا, آخرت پہ یقین رکھنا, یہ ایسے ایمان کی نمایاں خوبیاں ہیں. ہمارے یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں, ہدایت پر ہیں. دوسرے لوگ جو کافر ہیں ان کا تذکرہ فرمایا, اور تیسرا وہ طبقہ جو گناہ دین کا طبقہ ہے کہ جن کی زکات اور جن کے دیکھ میں آپس میں ملاؤ نہیں ہے, کہتے کچھ اور ہیں اور دل میں کچھ اور بنتے ہیں, یہ وفاق ہے, یہ منافقت ہے. ان کی نمایاں خوبیوں کا تذکرہ فرمایا کہ منافق کوئی جھوٹے ہیں, جھوٹے ہیں اور اہلِ ایمان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور یہ زمین کے فساد مچاتے ہیں, اور اپنے آپ کو بڑے عقل مند اور روشن خیال سمجھتے ہیں, اور وفاق کی مجلسوں میں جا کر اور ان کو اپنی حمایت کا یقین دہانی کراتے ہیں, اور مسلمانوں کے بارے میں بڑے بےحدا اور بڑے باخانہ کلمات کہتے ہیں کہ منافقین کا تذکرہ چلیا ہے یہاں انداز میں. ساری انسانوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی گئی, اور بہت سادہ انداز میں اللہ کی قدرت سمجھائی, کون ہے اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اللہ سمجھنا ہے اور اللہ کی معرفت بتانی ہے, تو اپنے من کرو اور کرو کہ دنیا کا چھوٹا سا قدم کوئی بنانے والا ہے, پر تمہاری شخصیت تو کیا تھوڑی تو بن گئے ہو, اور یہ سارا اللہ کا نظام جس نے پیدا کیا ہے, آسمان کے دیکھو بارش کون بھیجتا ہے, اسی قدم کا اللہ رب العزت نے سادہ انداز میں اپنی معرفت اپنی قدرت اپنی وحدانیت سمجھائی ہے. پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ, اگر اس میں شک ہے تو پھر یہ جیسا کچھ لے کے آ جاؤ, لے کے آ جاؤ, پھر تمہیں یہ اشکال ہے قرآن میں بچیل اور پوچھی کا بھی تذکرہ ہے, پر میں جیسی کوئی چیز ہو اسی کی مناسبت سے نصاب پیش کرنا ایسی حکمت ہے. لیکن جو بد نصیب ہیں وہ قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں, اور جو خوش نصیب ہیں انہیں قرآن سے ہدایت ملتی ہے, اور پھر منافقین فاجرین اور اللہ کے نافرمانوں کی نمایاں خوبیاں کہ وہ اللہ سے عہد توڑتے ہیں, اور جو بندوں سے عہد کرتے ہیں اس کو بھی فراموش کر دیتے ہیں, اور اللہ جن رشتوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے وہ اسے توڑ دیتے ہیں, زمین میں فساد آ جاتے ہیں. پھر اللہ نے انسان کو ایک خاص مرتبہ عطا فرمایا ہے, یہ دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے, اللہ کا نائب ہے, جسے اللہ نے مزدور ملائکہ بنایا ہے, اور فرشتوں میں اسے پیدا کیا ہے. اس کی عظمت کیوں, جسے اللہ نے علم کی صلاحیت اور استعداد عطا فرمائی ہے. پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ, جن پر اللہ نے انگت نعمتوں کا معاملہ فرمایا ہے, لیکن بڑی ناشکری قوم گزری ہے, اور بڑی احسان فراموش قوم گزری ہے. اس پر اللہ کی نعمتیں کہتی کہتی ہوئی کہ انہیں پانی کی ضرورت پڑی ہوئی, تو پتھر 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 پہ لاٹھی ماری, چشمے جاری ہو گئے, پیچھے دشمن ہے, آگے دریا ہے, وہاں سے راستے کی ضرورت پڑی, लाठी मारी तो समुद्र के अंदर दरिया के अंदर रास्ते बन गए, इसलिए निजात की शक्ति बन गई। लेकिन ये है कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले और पिछड़े की इबादत करने वाले, इन्हें जरूरत पड़ी एक मुजरिम की तलाश कैसे हो, तो हुक्म मिला गाय को जमा कर दो और उसका गोश मरने वाले के जिस्म से लगा दो, तो वो खुद बता देगा मेरा पाकि कौन है। ये भी अल्लाह की तरफ से कुदरत और इस कौम की अजमत थी कि अल्लाह ने ऐसा मुआवजा अदा फरमाया। फिर अल्लाह ने कौम को मुआवजा दिया कि आसमान का बादल इतनी छायादार बन गए और इनकी सजा आसमानों से हुआ आया करती थी और मन और सलवा अल्लाह आसमानों से दे दिया करता था। लेकिन ऐसे एहसास का बहुत सोच के अल्लाह की तरफ से आसमान से बने बनाए खाने लेकिन ये कह रहे हैं दाग चाहिए, बदन चाहिए। हम अपने आप को सवाल करने का शौक बहुत हो रहा और अल्लाह की नाफरमानी बहुत कर रहे थे, फिर उसका तस्करा फरमाया। अल्लाह ने सारी नियमतें इन्हें दे रखी है तकादा के साथ कि अल्लाह का शुक्र बजा लाने। फिर अल्लाह अपने दर से आए ईमान से कहा कि क्या लगता अपने नबी के बारे में जो गैर घटिया सवाल इस्तेमाल करते हैं, तो बतौकात अरबी का एक रंग रातना का मैंने आपके रंग तवज्जो करवाए और इसको अगर थोड़ा सा गलत कर दिया जाए रातना तो इसका मतलब भी अरबी और गुजराती है आपके रंग इस्तेमाल न करें, आप अपने नबी के बारे में यूँ कहा करें आप हमारी तरफ तवज्जो करवाएं, हमारी तरफ तवज्जो करवाएं। फिर अल्लाह अपने दर से फरमाया कुरान की कुछ ऐसे आई फिर मनसूख हो गई अल्लाह अल्लाह अलीम है अल्लाह निशान है। फिर उसी का तस्करा फिर जो खुद नसारा है जो अवगत में फिरता फिर अल्लाह ने इब्राहिम के बारे में और उसकी अजमत का तस्करा फरमाया है। इब्राहिम अलीम के बारे में कहते हैं कि अल्लाह का पैगाम इब्राहिम ने क्या आया इसलिए नहीं मानते, इसलिए कि फिर तो हमारे लिए सजा के फैसले भी लेके आता है। अल्लाह के इब्राहिम अलीम को तो नहीं आते अल्लाह के हुक्म से आते हैं, अल्लाह के फैसले से आते हैं। उसी का तस्करा फरमाया है। फिर अल्लाह ने यहूदी और नसरानियों की गिरदा वालियत का तस्करा एक उन्हें बुरा कह रहे हैं और दूसरों को बुरा कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह के बहुत प्यारे हैं, पर अगर हम अल्लाह के इतने ही प्यारे हो फिर मरने की तमन्ना क्यों नहीं करते और तुम जिंदगी से इतने प्यार जिंदगी से तुम्हें इतने हिल्स है तुम चाहो तो आजाद आज भी तुम्हारी उम्रें हो जाए तब भी तुम अल्लाह की पकड़ से तुम नहीं बच सकते। उसी का तस्करा फरमाया फिर अल्लाह ने अभी सलाम का तस्करा जिन्हें अल्लाह ने मुश्किल मुख्तलिफ आजमाइश के भागियों से गुजारा इब्राहिम है अलैहिस्सलाम हर इम्तिहान में और हर आजमाइश में कामयाब हुए। फिर अल्लाह ने हमें खास एहसास दिया मकाम इब्राहिम या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर बैत अल्लाह की तामीर फरमाई, वहाँ आज भी एक दफ्तर मौजूद है जो हजरत इब्राहिम का मुआवजा था कि आपको बुलंदी की जरूरत पड़ती तो ये पत्थर पर बहुत बुलंद होने लगता, आपको सस्ती की जरूरत पड़ती ये ऐसा पत्थर सिमटने लगता और नीचे होने लगता, ये आपकी मुआवजा था। तो उसको मकाम इब्राहिम उसका तस्करा फरमाया कि वहाँ नमाज पढ़ो और अल्लाह के घर को साफ सुथरा रखो। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने इतनी बड़ी नेकी दी कि आपने अपने घर की तामीर करवाई बैतुल्लाह की, लेकिन सुभान अल्लाह एक आदमी के पास खूबी है वो कितनी बड़ी नेकी कभी ना कर ले लेकिन उसके दिल में एक खौफ रहता है, एक खौफ रहता है पता नहीं इबादत का हक अदा हुआ या नहीं हुआ और इस नेकी का हक अदा हुआ या ना हुआ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की अल्लाह ने फरियाद की ऐ अल्लाह सबको इस नेकी को मुझसे कबूल भी फरमा, सब नेकी को कबूल भी फरमा दे। नेकी करने की सुन्नत यही है कि अपने पूरे आदाब के साथ उस नेकी को किया जाए और अल्लाह को राजी करने के जज्बे से किया जाए और फिर अल्लाह से उस नेकी की कबूलियत की दुआ भी की जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह आप सनी हैं तेरी ये फरियाद सब रहे हैं और अनेक भी हैं, मेरे दिल का खलूस भी जानते हैं, मेरे दिल का खलूस भी जानते हैं। ऐसा मैंने आपका घर बना दिया और इस धरती आबादी के लिए एक पैगंबर है, एक पैगंबर है। और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपने ये सलाम को भेजा और आपकी खूबियत क्या थी, आप कुरान के अल्फाज भी पढ़ाते थे, कुरान का इल्म भी सिखाते थे और दिल की तजकिया और दिल की पाकीज़गी का भी इंतजाम किया करते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाया नबूवत की खूबियां हैं, उसका तज़किरा फरमाया है। फरमाया बेहतरीन रंग वो है जो अल्लाह की नींद में आके रंग जाए, बेहतरीन रंग वो है जो आदमी अल्लाह की दीन में रंग जाए कि जहाँ हो तो अल्लाह का बंदा नजर आए और उसमें बंदगी नजर आए। और सिर्फ ये काफी नहीं कि हमारे अबाओ अजदाद ऐसे थे, हमारे बड़े ऐसे थे, इसलिए कि उनसे उनके बारे में बात खुश होगी और तुमसे तुम्हारे बारे में बात खुश होगी। फिर दूसरे बारे के आवाज में जब जिमले की तहरीर हुई और की चाहत थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो जज़्बा था बैतुल्लाह वो मेरा हो जाए, तो बस इसी इख्तियार में कभी कभी ये इख्तियार नजरें आसमान की तरफ उड़ जाया करती थी, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया। आज भी मदीना मुनव्वरा में वो मस्जिद मौजूद है जहाँ आप नमाज पढ़ रहे थे और दौरान नमाज हुक्म आ गया पबंदी वजह कर सफर मस्जिद हराम आप अपना किबला अपना चेहरा फेर ले। तो अल्लाह ने आपकी वो तमन्ना और आपकी वो चाहत पूरी कर दी जो आपके दिल में थी, लेकिन गुलामीन और मुबार को पहनने का मौका हाथ आ गया कि वो दिलदा सही था या ये दिलदा सही था, और जो पहले जिंदगी की तरफ दिमाग पढ़ते पढ़ते मर गए उनका क्या होगा। तो कुरान ने जवाब दिया उस जिंदगी की तरफ भी हम अल्लाह का था वो इबादत के कबूल, इस जिंदगी की तरफ भी हम अल्लाह का उसकी तामीर में इबादत कबूल। अल्लाह किसी की नमाज जाया नहीं करेंगे, उसी का तज़किरा फरमाया। फिर अहले ईमान से कहा अल्लाह की मदद चाहते हो और तुम्हें तो अल्लाह की मदद कदम कदम पे उसकी जरूरत है तो उसका रास्ता क्या है, सबर किया करो नमाज पढ़ा करो, सबर से और नमाज से अल्लाह की मदद आया करती है, सबर से और नमाज से अल्लाह की मदद आया किया करती है। बाकी आजमाइश तो आया करती है, अजमाइशें तो आया करते हैं, लेकिन इस्तेमाल और सबर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी और बड़ी बशारत है। अहले ईमान जब उन पर कोई अजमाइश और तकलीफ आ जाए तो उनके बोल होते हैं ये उनके बोल है कि अल्लाह मैं तेरे फैसले पे राजी हूँ, पर मैं ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं। मुसलमान सफा और मरवा सफा पर बहुत बड़े होते थे जमाना शिर्क में और मरवा पर भी बहुत बड़ा करते थे मुशरिकीन के जमाने में। जब ये सफा और मरवा पर सही करने लगते तो ख्याल आता कि बदले की हम ऐसा तो नहीं कि हम उस पुरानी रिवायत पर जिंदा कर रहे हैं, तो बताया सफा और मरवा में शाहिर ये तो अल्लाह के शाइर देते हैं, अल्लाह शाइर देते हैं। फिर अल्लाह की बड़ाई और हजमत का तस्करा है, फिर शैतान भी शैतान का तस्करा वो हमेशा बुराई की तरफ बुलाता है। और अल्लाह रब्बुल ने किस चीज को हराम करार दिया, تقدیر کو اور پہنے والے خون کو اور غیر اللہ کے نام پہ جو نظر و معیار دی جائے اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ پھر اللہ نے ان مناظر شریف کا تذکرہ فرمایا اور وہ پہلے کتاب کا تذکرہ فرمایا جو آسمانی کتاب میں سے حق بات کو چھپا دیتے ہیں اور حق بات کا تذکرہ نہیں کرتے، کیوں پیش نظر دنیا کی مفادات ہوتے ہیں، پیش نظر دنیا کے مفادات ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کی مذمت فرمائی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ دنیا کے خاطر گمراہی خریدتے ہیں، ہدایت کے بدلے میں بڑی ہمت ہے، بڑا حوصلہ ہے ان کا کہ کیسے آپ پہ صبر کریں۔ کیسے آپ پہ صبر کریں گے. اللہ ہمیں آسمانی کتاب پر صحیح ایمان بھی نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی زندگی بھی عطا فرمائے. الحمدللہ.